अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। सीनावद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। शिल प्रभापाद्रांसिब्यूशन की जय। साम पेर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishi Guru and Sri Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Krishna Gopa Krishna 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 Prabhu Pada Sarasaya Chamya Pakasya Vithira Charangirva Saragat Bhate Nama. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Desutarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we continue reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 10. It says here 12. We're in the wrong chapter there. Chapter 10, Maharaj Rahugana meets Jada Bharat. Text number 16. Kastvam Nigudha Charasi Dvijanam Bibharsi Sutram Katamo Abhadhuta Kasyasi Kutratya Ihapi Kasmat Semaya Nas Chet Asi Shukla Kastvam Nigudhas Charasi Dvijanam. Bibarsi Sutram Katamo Badhuta Kasyasi Kutratya Ihapi Kasma Shemayanaschet Asinota Shukla Kastvam Nigudhas Charasi Dvijanam Bibarsi Sutram Katamo Badhuta Kasyasi Kutratya Ihapi Kasmat Shemayanaschet Asinota Shukla. Katvam. Who are you? आप कौन है? Nigudha. Very much covered. Prachanna. Charasi. You move within this world. Dvijanam. Among the brahmanas or saintly persons. Bibarshi. You also wear. Shutram. The sacred thread belonging to the first class brahmanas. Katamaha. Which?
Kansi.
Abadhuta. Highly elevated person. Kashyasi. Whose are you? Whose disciple or son are you? Kutraya. From where? Iha api. Here in this place. Kasmat. For what purpose? Kshemaya. For the benefit. Na. Of us. Chet. If.
Yadi.
Ashi. You are. Aap hai. Nauta. Or not.
Adwa nahi.
Shukla. The personality of the pure mode of goodness, Kapila Dev. Okay, I'm going to read the translation in full and then he will translate the translation in full also. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. King Rahugana said, O Brahmana, you appear to be moving in this world very much covered and unknown to others. Who are you? Are you a learned Brahmana and saintly person? I see that you are wearing a sacred thread. Are you one of those exalted, liberated saints such as Dattatreya and other highly advanced learned scholars? May I ask, whose disciple are you? Where do you live? Why have you come to this place? Is your mission in coming here to do good for us? Please let me know who you are.
राजा रघुवर बोले हे ब्राह्मण आप इस जगत में अत्यंत प्रच्छन्न भाव से तथा अज्ञान रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं आप कौन हैं क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं आपने जनेऊ धारण कर रखा है कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके शिष्य हैं आप कहाँ रहते हैं आप इस स्थान पर क्यों आए हैं कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो यहाँ नहीं आए कृपया बताएं कि आप कौन हैं
Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Maharaj Rahugana was very anxious to receive further enlightenment in Vedic knowledge because he could understand that Jadabharat belonged to a Brahmana family either by disciplic succession or by birth in a Brahmana dynasty. As is stated in the Vedas, Tad vijnanartam sa gurum ibhavi gachet. Rahugana was accepting Jatabharata as a guru, but a guru must prove his position not only by wearing a sacred thread, but by advancing knowledge in spiritual life. It is also significant that Rahugana asked Jatabharata which family he belonged to. There are two types of families, one according to dynasty and the other according to disciplic succession. In either way, one can be enlightened. The word Shukla refers to a person in the mode of goodness. If one wants to receive spiritual knowledge, he must approach a bona fide Brahmana guru, either in the disciplic succession or in a family of learned Brahmanas.
तो वह अधिक वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठा। जैसा कि वेदों में उद्धृत है, तत् विज्ञानार्थम सद्गुरु एवामिदर्शित। रघुवर जड़ भरत को अपना गुरु स्वीकार कर रहा था, किंतु गुरु को चाहिए कि वह अपने पद को यज्ञों पवित्र धारण करने से नहीं पर अपने ब्रह्म ज्ञान से सिद्ध करे। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि रघुवर ने जड़ भरत से उनके कुल के संबंध में पूछा। कुल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वंश परंपरा से प्राप्त तथा दूसरा गुरु परंपरा से प्राप्त। इन दोनों ही प्रकारों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्ला शब्द सात्विक गुण का सूचक है। किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसे प्रमाणिक ब्राह्मण गुरु के पास जाना चाहिए, चाहे वह गुरु परंपरा से हो अथवा विद्वान ब्राह्मणों के कुल से संबंध।
अमज्ञानान्तिमिरन्धस्या घनञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायां ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे विषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
So here in this episode of the Bhagavatam, it's a great story about started from Maharaj Rishabdev, then the 100 sons headed by Maharaj, who became enamored by a deer, and that was the cause of his fall down.
तो इस महाप्रसंग श्रीमद् भागवतम में कहानी शुरुआत होती है महाराज ऋषभदेव से, उनके 100 पुत्र थे जिनमें सबसे श्रेष्ठ थे भरत महाराज, और एक हिरण से आसक्ति होने के कारण उनका पतन हो गया।
Yes, Bharat Maharaj, when he gave up his kingdom, knowingly that the purpose of human form of life is to end up the cycle of repeated birth and death, go back home to this spiritual world, he gave up his kingdom and he went to the forest.
भरत महाराज को जीवन के लक्ष्य के बारे में पता चला कि जीवन का लक्ष्य है कि भगवत धाम जाना और इस संसार से मुक्त होना, उन्होंने अपना राज्य छोड़ के जंगल चले गए।
And it was mentioned here in the Srimad Bhagavatam about this going to the forest and specifically saying Vrindavan.
तो इस भागवत में बताया गया है कि विशेष करके जब जंगल जाने के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब है वृंदावन जाना।
So you're very fortunate, you are in the right forest.
आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सही वन में हैं, वृंदावन।
You may be here physically, but consciously, mentally, we should also be in Vrindavan.
तो हम स्थूल रूप से, शारीरिक रूप से हो सकता है वृंदावन में हैं, इन मानसिक रूप से भी हमें वृंदावन में रहना चाहिए।
So Bharat Maharaj, he was meditating. Actually, he was in the Bhava Bhakti.
तो भरत महाराज भाव भक्ति तक पहुंच चुके हैं।
भाव भक्ति is very high, very close to prema bhakti. After भाव भक्ति is prema bhakti.
भाव भक्ति बहुत ही ऊंचा स्तर है, उसके बाद बस प्रेम भक्ति है।
We not even reach ananta liberty.
हम तो अनंत निवृत्ति तक भी नहीं पहुंचे।
Most of us are in the clearing stage, hopefully, not in the offensive stage.
अधिकतर लोग हमें से शायद हम अनंत निवृत्ति के स्तर पे हैं, शायद अपराध के स्तर पे नहीं।
But due to our contamination, for so many lifetimes, still we are in the what you call offensive stage, and at least trying to be in the clearing stage.
अनेक जन्मों से जो हमारे मन इकट्ठा हुआ है, इसकी वजह से हम अपराध के स्तर पे हैं, तो हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए हम अनंत निवृत्ति के स्तर पे।
So as we learn from this story, Bharat Maharaj, he became captured by saving this deer, a baby that was born from the mother deer, and all of his attention, all of his focus is just on the deer.
तो सब सुने कि भरत महाराज एक हिरण से आसक्त हो गए और उनका पूरा केंद्र, उनका पूरा ध्यान सब कुछ हिरण के प्रति चला गया।
When it's time to eat, you'll go look for the deer. Where is the deer? It's time to eat. It's time to sleep. Always deer consciousness.
तो हर समय जब भोजन का समय होता था तो देखते थे हिरण कहाँ है, जब सोने का समय होता था तो ढूंढते थे हिरण कहाँ है, हर समय हिरण हिरण, तो पूरे हिरण चेतना में थे।
So it says in the Bhagavad Gita, yam yam bhavi smaranam chajante ante kalyaram. Whatever one thinks at the time of death, that he will attain.
जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया यम यम बापि स्मरण भाव, तो जैसा कि अंत समय में जो चेतना हम हमारे अंदर रहता है, जो हम जो सोचते हैं वैसे हम सिद्धि प्राप्त करते
हैं। It depends on one's acquired modes of nature. If he's in the mode of goodness, he'll take birth more likely in the higher level. Mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance, lower species of life.
इस पर निर्भर करता है कि हम किस गुण में हैं। अगर हम सत्वगुण में स्थित हैं तो हमें ऊंचा जन्म मिलेगा, अगर हम रजोगुण तम गुण में हैं तो नीचा जन्म प्राप्त होगा।
So Bharat Maharaj took birth as a deer next life.
तो भरत महाराज को अगला जन्म एक हिरण बना
था। Because he was thinking of the deer.
क्योंकि वो हिरण के बारे में चिंतित कर रहे
थे। Many of the people I think of money, money, money all the time.
बहुत सारे लोग हर समय धन धन के बारे में सोचते हैं, पैसे।
And that is very dangerous as well. So, after some time, when Bharat Maharaj, he took birth as a deer, he understood this is about the uniqueness of one who performs bhakti. He cannot forget the past.
जो भक्ति करते हैं उनकी विशेष गुण है कि वो पूर्व जन्म को भूलते नहीं है तो जब उनका हिरण जन्म हुआ तब भी उन्हें याद है
So as a deer, Bharat Maharaj, he did not associate with other deer.
तो हिरण के जन्म में भी वो बाकी हिरणों के साथ संग नहीं किया उनका
He knew that if he associated with other deer, he would get contaminated again, and that he would fall down again, and then he would continue his birth again different species of life.
तुमको पता था कि अगर वो बाकी हिरणों के साथ अगर वो सब करेंगे होगा तो उनका फिर से पतन होगा और इस प्रकार वो संसार के चक्र में घूमते हैं
and then next life he took birth in a very highly brahmana family as jatavara
और उनका अगले जन्म एक बहुत ऊंचा ब्राह्मण परिवार में हुआ जयभरत के रूप में
but he's very learned he knows the subject matters of the Vedas he's well versed but He pretended that he is deaf and dumb.
तो हालांकि वो वेदों में बहुत शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि मानो वो गूंगे और बहरे थे।
Now, if his parents will say, "Do something," he will do the opposite.
उनके माता-पिता अगर कुछ उन्हें करने के लिए कहते, तो उसका उल्टा है।
The family members, of course, their hope for him is that he will learn the Vedas and become also expert. And explaining the Vedas, but internally he knows everything. Externally, he's showing that I am no use for me.
तो उनके परिवार में चाहते थे कि वो वेदों के बड़े पंडित बने, हालांकि अंदर से उन्हें ज्ञान था, लेकिन बाहर से वो ऐसा अभिनय करते थे मानो उन्हें कुछ पता नहीं.
Yes, if they want them to do something, he will do the opposite. And in this way, they figure out, oh, he is useless. Sometimes they will feed him some rotten food.
बाकी परिवार वाले सोचते हैं बेकार है, कोई काम के नहीं है, तो कई बार उनको सहवा भोजन दे देते हैं.
So somehow or other, one day, he was in the field because he's useless. Okay, so why don't he just work in the field?
तो वो सोचे बेकार है तो कम से कम चलो खेत में काम करो खेत में भेज दी
like a scarecrow you know a scarecrow
जैसे वो खेत में भगाने के लिए जानवर भगाने के लिए जो
you know sometimes in the farmers they have this plantation and they will have like a dummy like shape as a human but no moving
तो कई बार आपने देखा होगा खेत में पुतला बनाते हैं आदमी का तो हिलता नहीं है लेकिन वो वहां बांध है
scarecrow so that the crows who will eat the plants will not come
तो ताकि जब गौरैया चिड़िया आए कि पौधे खाने तो उनको भगाने के लिए उनको डराने के लिए
so they use him as a live scarecrow
तो पुतला किसी को उनको जिंदा कराने के लिए कि तुम भगाओ या जाओ
and somehow some dacoits were passing by
और उस समय कुछ डाकू वहां से गुजर रहे थे
and because they're looking for a sacrifice a person to be sacrificed to Kali they figure out this is the right person
वो लोग बलि चढ़ाना चाहते थे वहां से गुजरे तो उनको लगा ये सही व्यक्ति है
so they took him to the temple of Kali
काली माँ के मंदिर ले गए
the worshippers of Kali dacoits they worship Kali this he was you know a good person to be robbed and all these things
डाकू लोग होते हैं वो अक्सर काली की उपासना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छा शक्ति दीजिए हम डकैती कर पाए
So to get the favor of Kali, they would like to worship her with a sacrifice, a person.
तो काली माँ को प्रसन्न करने के लिए वो किसी आदमी का बलि चढ़ाना चाहते हैं।
But because Kali knows Jatavara is a Vaishnava.
लेकिन काली माँ जानती हैं कि जगन्नाथ एक वैष्णव है
सो काली प्रोटेक्टेड द वैष्णव जगन्नाथ बाय इंस्टेड ऑफ द डाकोइट्स ट्राइंग टू चॉप ऑफ द हेड ऑफ जगन्नाथ काली आल्सो अपीयर्ड फ्रॉम द पिलर्स एंड शी वाज देयर बट देन शी गॉट बर्स्ट शी बिकेम अलाइव एंड शी इज द वन हु किल्ड दिस डाकोइट्स
तो काली माँ ने वैष्णव की रक्षा करना चाहा तो जगन्नाथ महान वैष्णव थे उनकी रक्षा करने के लिए वो प्रकट हो गई और अपने वो तलवार लेके सारे नरकेतों का गला काट दिया।
So Jadavar became free. He obtained freedom from this. But then there was an entourage of a king. King Rahugana? Yes, King Rahugana. He was an entourage. And somehow he has to be carried in a palanquin, and the servers or the carriers of palanquin, they need one extra person to help him carry the king.
तो वहां से जो जयभर मुक्त हुए तो जब बाहर आए तो उसी समय रघुवर राजा की टोली वहां से गुजर रही थी और उनके जो पालकी था उनमें एक आदमी कम था तो उन्हें किसी की जरूरत थी जो पालकी उठाने में मदद करे।
And when they were carrying the king's palanquin, they thought, yes, he is a very good person. He's very stout, he's very strong, he's qualified to carry. But then, as a Vaishnava, before stepping, Jadavar will look if there is some insects or some ants on the road, and if there is some ants, then he will stop, and then he will let the ants go pass by, and then he will continue.
तो उन्होंने देखा कि जब वह अच्छे खासे हटे के लिए मजबूत व्यक्ति थे, देखिए अच्छे रहेंगे पालकी उठाने में, लेकिन जब वो पालकी उठाए चल रहे थे, तो रास्ते में जब वो चींटी देखते थे, तो बड़ा संभल के चलते थे, रुक रुक के चलते थे।
So this disturbs the king because it becomes imbalanced. Sometimes it's stopping, it starts to shake, and the king chastises the carriers, the palanquin carriers.
Says,
why are you doing like this?
लेकिन राजा बड़े विचलित हो गए क्योंकि जब वो इस तरह से चल रही थी चींटी को बचा के तो पालकी असंतुलित हो रहा था तो राजा चिल्लाने लगे क्या कर रहे हो ऐसे क्यों चला रहे।
He started to chastise them, especially Jadavara, because he understood that he was the one who caused this disturbance.
विशेष करके जड़भरत को डांटने लगे क्योंकि उन्हें पता चला यही व्यक्ति है जिसने ये समस्या खड़ी की है।
And he started to threat Jadavara that he'll get punished, he'll get penalized, he'll do harm to him.
और उनको धमकी देने लगे कि उन्हें दंड देंगे, उन्हें सताएंगे।
This is in the mode of passion, ignorance. When one becomes angry,
जो क्रोध आता है, वो रजोगुण और तमोगुण का लक्षण है।
Of course, devotees also can be angry, but in a proper way.
भक्त लोग भी कभी-कभी क्रोधित होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं क्रोध।
Like Hanuman,
जैसे हनुमान भी क्रोधित होते
हैं। If the devotees is being inflicted pain. Being criticized, being offended, they don't take the offense or the criticism because they know that they're beyond the body, their spirit soul.
तो अगर तू वैष्णव की कोई निंदा करता है या उन्हें हानि पहुंचाता है, तो वो उसको इतना गंभीरता से नहीं लेते। वो जानते हैं वो शरीर नहीं है, आत्मा है।
But if a fellow devotee is being criticized or being offended, or the Lord directly is being offended or criticized by others, he'll get angry.
लेकिन अगर तू उसे दूसरे भक्त का अपराध होता है या भगवान का भी अपराध करता है निंदा करता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है।
So to teach the lesson to the king, Jadavar retaliated and started to become philosophical.
तो राजा को शिक्षा देने के लिए जड़भरत उत्तर देने लगे और दर्शन उनको प्रस्तुत करने लगे।
He talked about the nature of the soul.
वो आत्मा के गुण के बारे में बताने लगे।
The soul is neither fat nor thin.
कि आत्मा ना तो मोटा होता है ना पतला होता है।
The soul is eternal. The body is temporary.
आत्मा शाश्वत है और शरीर क्षणभंगुर है।
So now the king started to, as you may say, he woke up. It was like being startled by the philosophy that's being given or taught by Jadavara.
तो रघुगण जब इस सुने तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या दर्शन कह रहे हैं।
So this is the nature. The sadhus and the vaisavas, their main purpose is to cut the attachment of the materialists.
तो साधु वैष्णव का यही मुख्य कार्य है कि जो भौतिकवादी लोग हैं उनकी आसक्ति को काट देना।
They are there to tell the people in general that they are going in the wrong direction.
तो वो लोगों को बोलते हैं कि इसको गलत दिशा में जा रहे हैं.
People are going to hell, and the Vaishnava says, "Don't go there. Go back. Come back to Godhead."
तो लोग जो हैं वो नरक की तरफ थे जिसे जा रहे हैं कि वैष्णव ने लोग के बता रहे कि नहीं नरक मत जाइए आप धर्मधाम जाइए.
So those who can understand the purpose or the intentions of the Vaishnavas, they become enamored, and also they would like to find out more and more about them.
तो कुछ लोग हैं जो वैष्णव के आदेश से सुनकर अच्छा लगता है और अधिक जानना चाहते हैं.
So when your preaching is effective, the preachers were supposedly meant to preach the message of God, message of Lord Krishna. If your message is really effective, the sleeping soul, it starts to wake up. Like here, if you are sleeping, but I don't have that potency, so they are still sleeping.
तो हम सबको प्रचारक बनना है भगवत संदेश का, और अगर हम प्रभावशाली रूप से प्रचार करें तो सोते हुए जो जीवात्मा है वो जग जाएगी. यहाँ पे भी कुछ भक्त सो रहे हैं तो मैं इतना प्रभावशाली नहीं हूँ, उनको जगा नहीं पा
रहा.
तो सोलह तमो कनेक्शन और अनादिकाल से हम माया रूपी जो चुड़ैल है उसी गोद में सो रहे.
And this is the message of the Vaishnavas, to wake them up from the sleeping condition, to come to their real constitutional position.
तो वैष्णव का यही कर्तव्य लोगों को जगाना है ताकि इंद्रा से जगे और अपने वास्तविक स्थान को प्राप्त करें.
So King Rahugana started to wake up.
और रघुवर फिर जगे.
Starting to ask Jadavar, who are you? You seem to be a very learned person. You appear to be moving in the world, going here and there, but covered up and unknown to others.
Raghuvar पूछें कि आप तो अत्यंत विद्वान प्रतीत होते हैं, लेकिन आप ढके हुए यहाँ विचरण कर रहे हैं, लोग आपको पहचान नहीं पा रहे.
Kasvam Yudhascharasi Vijanam. Now he started to understand the position of Jadavara, because not an ordinary person can speak like what he said.
तो वो समझने लगे कि जड़भरत अत्यंत ही विद्वान पुरुष हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति ऐसी संदेश नहीं दे सकते.
Words are very powerful.
शब्द हैं वो बहुत शक्तिशाली होते
हैं. He says that pen is mightier than the sword. The sword can cut you, but then the pen is so penetrating, it'll affect you inside.
तो देखिए ने कहा थी कि जो कलम है उसका ताकत तलवार से भी ज्यादा है. तलवार तो हमारे हाथ को काट सकता है, इन कलम से लिखा हुआ संदेश हमारे देह के अंदर भेद कर सकता है.
Just like here, Srimad Bhagavatam, the pages of Srimad Bhagavatam, they're so powerful. It penetrates, it goes right directly to the soul.
जैसे ये भागवतम का संदेश है जो गुरुदेव जी लिखा है कि इतने शक्तिशाली है कि सीधे आत्मा के स्तर पर वो भ्रमण करता है.
So similarly, in the same level, maybe much more, words are very powerful.
इसी तरह जो शब्द है वो बहुत शक्तिशाली है.
Sound vibration.
जो ध्वनि है शब्द.
So we have to be careful. Vaishnavas, we have to be careful in what we say and what comes out into our mouth. Because it can be very, very painful. Even if your intentions are good, you want to say something which is beneficial for the other person. But then, if you are not careful, or the other person is not able to accept or receive what you're saying, it will go in a different way that the person may see it as offensive.
तो कई बार हम दूसरों का हित करना चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हम सही ढंग से नहीं बोले तो वैष्णव उसका गलत सोच के और उसको आघात महसूस होता है.
Truth has to be spoken palatably.
तो जो सत्य है उसको मीठे तरीके से बोलना चाहिए.
Usually truth is very painful.
Yeah, लेकिन अगर हम ऐसे नहीं कहेंगे तो उसे बहुत दर्द पहुंचता है.
Because of our conditioning, we don't want to change. Changing is very difficult. To change is very difficult.
तो हमें बदलना चाहिए लेकिन हम बदलना नहीं चाहते क्योंकि बदलना बहुत मुश्किल है.
So if somebody corrects us so that we can change, usually we revolt. We don't want to do it.
तो अगर हम उसे सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हम उसके खिलाफ हम विप्लव करते हैं और बदलना नहीं चाहते.
But a sadhu, Vaishnava, is like an expert doctor.
लेकिन साधु वैष्णव एक बहुत कुशल डॉक्टर के समान है.
The words coming out from sadhus may be a little bit difficult to accept. But also he's like a doctor, he has this very sharp, it's called shrapnel. And he can just a little bit like this and he can open up so wide.
लेकिन जो वैष्णव होते हैं बहुत कुशल रहते हैं, डॉक्टर की तरह जैसे उनका इंस्ट्रूमेंट रहता है, छोटा सा रहता है लेकिन उससे वो काफी काट सकते हैं.
So similarly the sound is like this, it can be painful to hear but it's purifying to follow.
तो कई बार जो साधु की वाणी है वो सुनने में जरा उससे हमें आघात पहुंच सकता है लेकिन अगर वो पालन करेंगे तो उससे हम शुद्ध होते हैं.
So Maharaj Rahuvinda is asking Jadavar, are you a learned Brahmana and saintly person? I see that you are wearing a sacred thread.
तो वो प्रश्न पूछे कि आप विद्वान ब्राह्मण हैं क्योंकि आप तो जनेऊ पहने हैं.
द्विजानां विद्वांसि सूत्रां. सूत्रां means sacred thread. If you have a sacred thread, that means you have a guru.
अगर आप उपवीत या जनेऊ धारण किए इसका मतलब आपका कोई गुरु है.
And in ISKCON, when one takes first initiation, he wants to become a brahmana.
और इसको भी जब इसकी पहली दीक्षा हो जाती है तो ब्राह्मण बनना चाहता है.
Brahmana, because Brahmana means Brahmana iti Brahman. Brahmana means one who knows Brahman, one who knows Krishna, one who knows the absolute truth.
तो ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है या कृष्ण को जानता है या परम सत्य को जानता है.
So sometimes devotees they just want to take second initiation for the sake of being called as a Brahmana.
कई बार ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं केवल इतना ही कि बस उसको ब्राह्मण के रूप में जाना
जाएगा.
हालांकि उनको पता नहीं ब्रह्म क्या है.
Being a brahmana means you get closer to the spiritual master. That is the meaning of brahmana also. Closer to Krishna means closer to the spiritual master.
तो ब्राह्मण का एक अर्थ ये भी है कि हम कृष्ण के पास आए हैं और कृष्ण के पास आ रहे हैं यानी गुरु के पास आ रहे हैं.
Not like, well, of course, it says here there are two kinds of family. One is through dynasty and one is through parampara.
यहाँ पे दो तरह का कुल का वर्णन है, एक परंपरा के माध्यम से और एक पारिवारिक कुल.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was criticized also by the smart brahmanas, giving brahmanas even to the not a brahmana. Who belong to a Brahminical family. But Brahmana is for everyone, even if you are a dog eater.
तो श्री भक्ति सर ठाकुर को भी लोग निंदा करते थे क्योंकि वो ब्राह्मण दीक्षा देने लगे उनको जो कि ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ. ब्राह्मण हर कोई बन सकता है, अगर कोई चांडाल परिवार से ब्राह्मण बन सकता है.
If you become qualified as being a Brahmana, you can be in the lowest class, a chandala.
अगर आपका योग्यता है तो आप चांडाल परिवार में जन्म हो के भी आप ब्राह्मण बन सकते हैं.
And those brahmanas who belong to family lineage, but then not exhibiting brahminical culture, they're what you call dvija bandhu.
लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म होता है लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं होते उनको द्विज बंधु कहा जाता है.
And this is in India it's like this, because my father is a brahmana. Therefore, I am also a Brahmana, even if I am not qualified to become a Brahmana. I will still wear a Brahmin thread by going to bazaar for how much? 2 rupees.
लेकिन भारत में ऐसा है कि अगर मेरे पिता ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण बन जाऊंगा, 2 रुपए में लोहे बाजार से जनेऊ खरीद के पहन के ब्राह्मण बन जाऊंगा।
Of course, men wear Brahmin thread. The ladies also they can become Brahmana, but they don't wear Brahmin thread.
तो महिला भी हैं, वो भी ब्राह्मण बन सकते हैं, लेकिन वो जनेऊ नहीं पहनते।
They chant the mantras also.
वो भी मंत्र जप कर सकते हैं।
Prabhupada, when he gave the first Brahmin initiation in Boston, the ladies who took Brahmin initiation, they asked Prabhupada, where is our Brahmin thread?
जब पहली बार ब्राह्मण शिक्षा प्रभुपाद जी बॉस्टन में दिए तो जहाँ माता की भक्ति वो प्रश्न की हमारा जन्म का है
you don't get your Brahmin thread, but you get the mantras from the bona fide representative of the Supreme Lord.
तो महिला को जनेऊ नहीं होता लेकिन भगवान के प्रतिनिधि से उसको मंत्र मिल सकता है।
So when the conditioned soul started to inquire about the absolute truth, then he will be a spiritual master.
तो जब एक कोई बद्ध जीव अगर परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करता है तो उसे गुरु की आवश्यकता है।
Who needs a guru?
गुरु की आवश्यकता किसको है?
Those who wants material sense enjoyment, you don't need guru.
अगर आपको भौतिक इंद्र तृप्ति चाहिए तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं।
You want to advance spiritually, go back home, back to spiritual world, you need a guru.
लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, भगवत धाम जाना है, तब गुरु की आवश्यकता है।
And says guru must also be a brahmana.
और कहा जाता है गुरु को भी ब्राह्मण होना चाहिए।
One can only advance as much as possible according to also the advancement of the spiritual master.
और एक व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ सकता है भक्ति में जितना कि उसकी गुरु ने प्रगति की है।
So, in conclusion, Jadavarat now will start to speak after this.
और इसके बाद जब फिर आगे भी कहेंगे,
again to further elucidate and start Maharaj Sarupana. If one wants to elevate himself, not just in the mode of goodness, but in pure goodness, then he needs a spiritual master.
अगर किसी को प्रगति करना है सत्वगुण पाने के लिए या विशुद्ध सत्वगुण पाने के लिए तो गुरु की आवश्यकता है।
The spiritual master must be qualified and the disciple also must be qualified.
तो गुरु को भी योग्य होना है और शिष्य को भी योग्य होना है।
It's not just because, oh, my guru is a pure devotee, and therefore I can do anything and everything, I still go back home, back to God.
ऐसा नहीं सोचते हैं कि गुरु शुद्ध भक्त है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भगवत धाम चला जाता
हूँ। No, there is an agreement at the time of initiation that the responsibility that has been taken by the spiritual master to help make the disciple advance is that the disciple must follow all the regulative principles and chant minimum rounds every day.
जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु के साथ हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि सारे नियम का पालन करेंगे, सोना माला या जो माला है नियमित रूप से करेंगे।
We should not neglect this.
तो हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
And expect that our guru will take us home back to Godhead even if we don't follow.
और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पालन नहीं भी करेंगे तभी हमें गुरु भगवत धाम ले जाएंगे।
So, would like to thank you all for listening.
तो आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए।
Even though I don't know Hindi.
हालांकि मुझे हिंदी नहीं पता है।
Some of us this morning was like there's no speaker, so I volunteered that I will speak to get your association.
आज सुबह हिंदी में भी प्रवचन देने वाले नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं आज प्रवचन देके आप सबका संग बात करूंगा।
I mean, you're missing some of our good, I mean, I'm not good, some of our good speakers from the English speaking Srimad Bhagavatam class. So I was telling Dharmanand Prabhu that from time to time, when there's some visiting sannyasis or Prabhupada's disciples, they should also come here and speak to you.
तो हरिहर जी क्लास में कई प्रभुपद के बड़े भक्त आते हैं, शिष्य रहते हैं, तो आप लोग को मौका नहीं मिलता, तो मैं आज हरिहर से कह रहा था कि कई बार हम उनको भी यहाँ बुलाना चाहिए और आपको उनको सुनना चाहिए।
Do you have any questions?
किसी का प्रश्न है कोई?
Yes.
Hare Krishna Maharaj. When that Bharat Maharaj, he was at such an elevated stage.
Yes, Baba Bhakti.
Yeah, and. He was so caring, and you know, like a Vaishnava, we're supposed to be caring, and he was always caring for the deer, whether the deer eaten or not. So, for us, like aspiring devotees, you know, when we are with devotees and family, we see everybody as relation to Krishna. Even like we tend to be attached to the family. And
we have to be careful not to be, there is what you call affection and attachment. These are different. Affection should be always be there to the family members or friends. Affection means you care. Now attachment is different.
So Prashna Mataji ka isse jad hai kitne भरत महाराज इतने ऊंचे सबको प्राप्त किए भाव भक्ति, फिर भी वो हिरण शासक का दुर्गा पतन हो गया, तो हमारे परिवार वाले इनसे क्या हमें प्रेम करना चाहिए या नहीं? तो महाराज कहते हैं कि दो शब्द हैं, अफेक्शन अटैचमेंट। अगर हम दूसरे के बारे में उनका भला के बारे में सोचते हैं उसमें भी बुराई नहीं, लेकिन आसक्त नहीं होना
चाहिए। That be careful of this material attachment because it's only in relation to the body, which is temporary. This is a no-no.
तो हमें भौतिक आसक्ति से बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि केवल शरीर के संबंध में आसक्ति होता है।
It's very difficult to cut. The main reason why we're still in this material world is because our material attachment, especially to our family members.
तो एक मुख्य कारण हम इस संसार में हमारे बंधन का है, हमारे भौतिक आसक्ति विशेष करके परिवार वालों के साथ।
This is the strongest bond that we have to somehow one day to be given up.
तो ये मजबूत बंधन है, लेकिन इसको हमें इस तरह किसी दिन छोड़ना चाहिए।
If you can, because Grihastha life means extra luggage.
अगर आप रह सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन गृह जीवन में नहीं, अधिक बोझ उठाना है।
But it doesn't mean Grihastha life is bad. The best ashram, okay, brahmacharis, the best ashram in Kali Yuga is Grihastha ashram. Because in the Grihastha ashram, you will learn a lot about life. Actually, Grihastha means learning how to become detached.
तो कलयुग में गृहस्थ आश्रम अच्छा आश्रम है। इन गृहस्थ आश्रम से हम सीखते हैं कि कैसे हम आसक्त ना हों।
So how, why to get into it?
If you cannot control, you cannot control the senses, you cannot control the mind, better you go to that ashram where you'll be able to control your senses and mind and do bhakti.
तो अगर आप अपने मन और इंद्रियों के वश नहीं आता, इससे बेहतर कि आप गृहस्थ आश्रम में जाइए और अच्छे से भक्ति कीजिए।
If you can do control your senses and your mind, maybe as brahmachari.
तो अगर आपको अपने मन और इंद्रियों पे आपका नियंत्रण है तो आप ब्रह्मचारी जीवन में।
If you are pretending to become a brahmachari and you cannot control your mind and your senses, that is dangerous.
लेकिन अगर आप ब्रह्मचारी बनने का ढोंग कर रहे हैं और मन और इंद्रियों के आपका वश नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक है।
You may become a bachelor dadi.
Dadi.
तो आप
bachelor dadi.
Bachelor dadi बन सकते
हैं। It doesn't make sense, doesn't it? Bachelor Daddy. Bachelor Daddy is pretending, but then, like, some here in India, they wear sarung tangan, but they have many girlfriends.
Bachelor Daddy मतलब भूखी लोगों से आती है कि बाहर से आप गिरवा पहने लेकिन बहुत सारे आप स्त्रियों के साथ आपका संबंध है.
This is why they call cheaters. Instead of teachers, they are cheaters.
वो धोखा देने वाले हैं.
There are what you call charlatans. In India, there's a lot of cheaters. I'm sorry to say.
वैसे इंडिया में बहुत धोखेबाज होते हैं.
As Prabhupada says, when he was a young boy, he would see so many sadhus coming because his father, Guru Mahadev, asked blessings that his son will become the devotee of Srimati Radharani. So in the daytime, they have saffron color. And then in the evening, they have pants and shirt.
तो वही कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता गौरवन ने बहुत साधु को घर बुलाते थे उनसे बोलते थे आशीर्वाद देते थे राधा ने का मत करें तो दिन में तो केरवा वस्त्र पहनते थे और रात को पैंट शर्ट पहनते थे.
What to do? As Prabhupada says also, some they will retire in Vrindavan, they will become like a sadhu, but then they will keep their bank account at home. And still, you know, the connection is there. You know, we have a very good example who left his body last night, Sarjuna Prabhu. He is a very exemplary brahmachari. He doesn't talk too much, he reads books every day. Every time I see him, I say, Sarjuna, and he will just smile. You know, he could have earned 30,000 rupees every day, every month. From his pension, but no, he did not take it, and his son was gonna take him to bring home because he's sick. And Sarjuna says, "No, I'm staying here." If he agreed for him to be taken by his son to go home because of attachment, material, family attachment, then he will lose the chance of going back to the spiritual world. But he left his body here, which means that his life was successful.
तो सरजू दादू इसकी बहुत ही अच्छी उदाहरण है. कली वो शरीर छोड़े उनका कोई आसक्ति नहीं था परिवार से. उनको पेंशन मिला था 30,000 का, लेकिन वो पेंशन नहीं लिए. यहाँ हर समय किताब वितरण करते थे. जब भी मैं उनसे मिलता था वो मुस्कुराते थे, इसे फालतू बात नहीं करते थे. और कुछ दिन पहले जब उनका शरीर अस्वस्थ हुआ तो बेटे उनको बुलाए दिल्ली जाने के लिए, लेकिन वो गए नहीं. वो बोले नहीं मैं यही रहूंगा. और अगर बाहर जाते तो वृंदावन शरीर नहीं छोड़ पाते, यहाँ पे शरीर छोड़े और भगवत धाम वापस गए.
So be in the ashram where you can execute devotional service to the best of your ability. It is not that sannyas is better than brahmacharya or brahmacharya is better than grihastha. No. It doesn't matter which ashram you are. The purpose is to say you have to execute bhakti. But do it in such a way where you feel the best, most comfortable.
तो मुख्य चीज ये कि मैं भक्ति कर रहा है, चाहे आप कोई भी आश्रम में गृहस्थ ब्रह्मचारी संन्यास, तो ये आपको निर्णय करना है कि कौन सा आश्रम अच्छे से